8 फरवरी दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। मुंबई हमले मामले में डेविड हेडली की गवाही क्या निकल कर आया सामने?
देखिए, डेविड कोलमैन हेडली जो एक दहशतगर्दी है, उसने आज कई सनसनी खुलासे किए, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले की साजिश क्यों हुई थी, उन्होंने किसने हिस्सा लिया था और क्यों उसमें ज्वाइन हुआ, इसके बारे में बताया।
देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में क्या है मुद्दा।
विकास की बात में है, पहले बेटियों का लड़कियों का सम्मान सुरक्षित रहे, हमारा सम्मान ही सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार अति हो गई है और खौफनाक वातावरण इस जनपद में भी अब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है।
मशहूर शायर निदा फाजली का देहावसान, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। 2008 के मुंबई हमलों के मामले में अमेरिका की जेल में बंद पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली ने माना है कि वो हमलों से पहले जानकारी हासिल करने के लिए 7 बार मुंबई आया था। डेविड हेडली ने आज मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी। डेविड हेडली ने खुद को पाकिस्तान आधारित लश्कर ए तैयबा का पक्का समर्थक बताया। डेविड हेडली ने अदालत को एक पाकिस्तान के एक शख्स साजिद मीर का नाम भी बताया, जो लश्कर में उसका मुख्य संपर्क सूत्र था। 2008 में मुंबई में हुए हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ताइवान में भूकंप से ध्वस्त हुई इमारत के मलबे से 8 साल की एक बच्ची समेत 4 लोगों को बचा लिया गया है। शनिवार को आए भूकंप में ये इमारत गिर गई थी, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 100 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। काओसियोंग वेटर्न्स जनरल हॉस्पिटल के डीन वांग झी लूंग ने बताया कि हालांकि बचाव कार्य जारी है और लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने कहा,
घंटे
के बाद भी लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन अगर लोगों ने गर्म कपड़े नहीं पहने, खाना और पानी नहीं है, बादल लगे हैं और सर्दी से मौसम भी खराब हो रहा है, ऐसे में ये लोग ठंड या भूख से मर सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते ये सब मुझे बहुत क्रूर स्थिति लग रही है। ये थे वांग जी लुंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। ट्राई के अध्यक्ष आरएस शर्मा ने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के अलग अलग वेबसाइटों के लिए अलग अलग शुल्क लेने की इजाजत नहीं होगी। फ्री इंटरनेट पहुंचाने की फेसबुक इंक की योजना को ट्राई के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। फेसबुक की फ्री बेसिक्स योजना में कुछ वेबसाइटों को निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा दी जाती है। तुर्की के मीडिया से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक एक नाव हादसे में 33 प्रवासी एजियन सागर में डूब गए हैं। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप के पास एजियन सागर में करीब 22 प्रवासियों की डूबने से मौत हो गई है। एक दूसरे हादसे में तुर्की के दिकिली रिजॉर्ट के पास 11 प्रवासियों के शव मिले हैं। पिछले कई दिनों में यूरोप आने की कोशिश में हजारों प्रवासियों की मौत हो चुकी है। उत्तरी कोरिया के लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण के मसले पर बातचीत के लिए चीन ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के राजदूतों को तलब किया। उप विदेश मंत्री लियू झेनमिन ने चीन में उत्तरी कोरिया के राजदूत से रॉकेट के प्रक्षेपण में प्रतिबंधित तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राजदूत से भी उन्होंने चर्चा की। दक्षिण कोरिया और अमरीका के बीच उत्तरी कोरिया पर निगरानी रखने के लिए मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली तैनात करने की औपचारिक बातचीत शुरू का विरोध जताया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले में अभियुक्त अबू जुंदाल के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में मुकदमा चल रहा है। इसी मामले में दूसरे अभियुक्त और अब सरकारी गवाह डेविड हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की गई। पूछताछ में क्या सामने आया और हेडली के गवाह बन जाने के क्या मायने हो सकते हैं, बता रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी सुशांत मोहन।
डेविड हेडली उर्फ सैयद दाऊद गिलानी ने आज मुंबई की एक विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बतौर सरकारी गवाह अपनी पहली गवाही दी। पाकिस्तानी मूल के अमरीकी नागरिक हेडली ने साल 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों की प्लानिंग और आतंकियों के द्वारा निशाना बनाए जाने वाली जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर इस हमले की कार्य योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत में हुए हमले के बाद हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे साल 2013 में 35 सालों की सजा भी सुनाई गई। डेविड हेडली को भारत सरकार की ओर से भी सजा मिलती, लेकिन अबू जुंदाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनकर डेविड हेडली ने माफी की मांग की, जिसे भारत सरकार ने मान लिया है। बतौर सरकारी गवाह आज डेविड हेडली की पहली गवाही थी और 26/11 मामले में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने उनसे हुई पूछताछ के बारे में बीबीसी को बताया।
देखिए, डेविड कोलमैन हेडली जो एक दहशतगर्दी है, उसने आज कई सनसनी खुलासे किए, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले की साजिश क्यों हुई थी, उन्होंने किसने हिस्सा लिया था और क्यों उसमें ज्वाइन हुआ, इसके बारे में बताया। उसका नाम जो था पहले क्या था और जो उसने नाम दाऊद गिलानी से क्यों चेंज किया और भारत में हमले की क्या मकसद था एलएटी के बारे में, इसकी भी उसने आज जानकारी दी। इतना ही नहीं तो लश्कर तोयबा का जो फाउंडर है, जो हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी, इनके नाम उसने लिए। वो कहते थे कि भारत के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, जिहाद का मतलब उन्हें बोला कि इंडियन फोर्सेस से युद्ध करना चाहिए, ये बात उसने बताई। पाकिस्तान के बारे में उसने इन्वॉल्वमेंट ये बताया कि हमने एलएटी में ज्वाइन हुआ, पाकिस्तान में ज्वाइन हुआ था, ये बात उसने आज बताई।
उज्जवल निकम ने ये भी साफ किया कि डेविड हेडली से कल सुबह 7 बजे से फिर से पूछताछ की जाएगी, लेकिन हेडली के भारत लाए जाने की सभी संभावनाओं पर उन्होंने विराम लगा दिया।
नहीं, वो भारत में लाने का संबंध बाकी बाद में देखा जाएगा, उसको तो 35 साल की सजा वहाँ हुई है, सजा काटनी है।
इस मामले पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सदस्य माजिद मेमन ने अपनी राय रखते हुए डेविड हेडली की गवाही को महत्वपूर्ण और भारत के लिए एक बड़ी सफलता माना है।
बिल्कुल, देखिए, इस 26/11 के नाजुक मामले में जो बहुत ही गंभीर रहा है, सारे विश्व में जिस पर चिंता प्रकट की गई थी, उसमें एक ऐसे व्यक्ति के जरिए शपथ पर एक बयान आज अदालत के सामने आया है कि जो इसमें खुद शामिल था, और चूंकि इसे माफी गवाह बना दिया गया है और एक अप्रूवर की हैसियत से आज उसका बयान अदालत में दर्ज हो रहा है। ऐतिहासिक अगर इसे देखें तो पहली बार किसी ऐसे गंभीर गुनाह में इतने हजारों मील दूर से एक प्रदेश में से एक आदमी डायरेक्ट कोर्ट में बोल रहा है और उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब जाहिर है ये शख्स चूंकि गुनाह में खुद शामिल था, तो इसके बयान की अहमियत को देखते हुए इसे बड़ी बारीकी और गंभीरता के साथ रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, इसलिए कि हमें इस बात का अंदेशा होना चाहिए कि कल जब अदालत इस मामले को आगे बढ़ाकर फैसला देगी तो पाकिस्तानी सरकार शायद उसको मानने से इनकार कर दे, इसलिए इसमें हमें कहीं गलती या कोताही नहीं करनी चाहिए और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और कानून के दायरे में ये एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने की होनी चाहिए।
लेकिन माजिद मेमन ने मीडिया और लोगों को चेताया भी कि इतनी जल्दी वो किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे।
नहीं, इतने जल्दबाजी इसमें ना करें, मीडिया बहुत ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जल्दबाजी करती है। मैं अपील करूंगा कि इस मामले में, इतने संवेदनशील मामले में, इस तरह की जल्दबाजी ना करें। अभी उसका वकील जो है जिंदाल का, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अदालत उस सारा मटेरियल को असेस करेगी और उसमें कितना सच्चाई है और क्या पाकिस्तान का हाथ है, क्या कुछ लोगों का जिनके नाम देगी, ये सारी चीजें अदालत अपने विजडम से और अपनी जजमेंट से प्रकट करेगी, उसके बाद हमें इस पे कमेंट करना चाहिए।
मुंबई की विशेष अदालत में कल फिर से डेविड हेडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देंगे और जाहिर तौर पर कुछ नए तथ्य और 26/11 की साजिश से जुड़े नए नाम सामने आ सकते हैं। सुशांत मोहन, बीबीसी मुंबई।
हमारे साथी जुबैर अहमद को डेविड हेडली पर अमेरिका में चले मुकदमे और नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले को कवर करने का मौका मिला था। मैंने उनसे डेविड हेडली की पृष्ठभूमि पर कुछ रोशनी डालने के लिए कहा।
देखिए, मैं शिकागो में 2011 में उनका मुकदमा चल रहा था, जब वो एक सरकारी गवाह के हवाले से अपना बयान दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। मुंबई हमलों में जो 2008 में हुआ था, उनकी भूमिका के बारे में सबको पता है, लेकिन उनका चुनाव कैसे हुआ, क्यों उन्हें चुना गया, ये बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने खुद ही कहा था कि वो भारत से इतनी घृणा करते थे, क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो उनके हिसाब से भारत ही इसका जिम्मेदार था, और उनके स्कूल पे भी अटैक हुआ था, जो स्कूल उनकी बिल्डिंग गिर गई थी, तो उस घृणा को वो पालते रहे। और जब सन 2000 में वो लश्कर-ए-तोयबा के करीब आए तो तो पता चला लोगों को कि भारत के प्रति उनकी क्या फीलिंग है। उसके बाद उन्होंने उसको इंडॉक्ट्रिनेट किया, उसको समझाया, एक साल ट्रेनिंग दी, फिर एक साल जो है उनके साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हुई। उसके बाद उनको तैयार किया गया 2006 में कि आप जाइए भारत, मुंबई में हमला कीजिए। और उस वहाँ वो 7 बार गए मुंबई, वहाँ उन्होंने तस्वीरें उतारी, वीडियो वगैरह निकाले, और उसके बाद उसी के आधार पर किन जगहों पे हमले किया जाए वो लश्कर ए तैयबा ने तय किया, और 10 लोगों को जो भेजा गया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ।
और यहाँ पर मुंबई में उन्होंने काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती भी की,
बहुत ज़्यादा उनकी दोस्तियाँ थी, बड़ी पार्टियाँ वगैरह करते थे। जब महेश भट्ट के जो बेटे हैं राहुल भट्ट, उनसे हमारी एक बार बात हो रही थी तो उन जिम में उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि वो रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में भी काफ़ी उनसे चर्चा होती थी। और कई जो बॉलीवुड की रंगीन शामें हैं वहाँ हेडली को भट्ट ने ही इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि काफ़ी रंगीन मिजाज भी थे, बहुत सारे बॉलीवुड की जो बी कैटेगरी की जो हीरोइनें थी उनसे भी उनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन दूसरी तरफ उनका एक मिशन था कि मुंबई के हमले की तैयारी के सिलसिले में, तो दिन में वो वीडियो भी उतारते थे और तस्वीरें भी लेते थे उन जगहों की जहाँ पे हमले किए जा रहे थे।
अच्छा, कुछ उन लोगों पे रोशनी डालिए जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध किए हों और उनको अभी तक भारत सरकार पकड़ नहीं पाई है।
बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। हमने ये देखा कि अभी हाल में ही जो एक सऊदी अरब के डिप्लोमेट थे जिनके खिलाफ ये आरोप था कि उन्होंने अपनी जो मेड हैं नेपाल की 2, उनके साथ बलात्कार बार बार किया और उन्हें अगवा भी किया, लेकिन हमने देखा कि वो आसानी से उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया बल्कि उनको वापस भेज दिया गया। जिनेवा कन्वेंशन के आधार पे उनको वापस उनके देश भेज दिया गया। इसके बाद हमें ये भी पता है कि इटालवी जो मरीन्स थे, 2012 की ये वाकया है, 2 लोगों ने 2 केरला मछुआरों को गोली मार दी थी। उसके बाद मुकदमा चला उनके खिलाफ, लेकिन ये अभी भी ढीला पड़ता गया है। एक को तो वापस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ही रिक्वेस्ट पर उनका इलाज चल रहा है। दूसरा जो इटालवी है वो अभी इटालियन एम्बेसी में यहाँ पर है, वो यहीं पर रह रहा है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा जो है तय नहीं हुआ उनके खिलाफ। इसी तरह से एक पुरुलिया हथियार ड्रॉप केस है जिसमें 5 और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो सारे विदेशी थे, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और उनको वापस कर दिया गया। तो एक तरह से इस तरह की और कई मिसालें मिलती हैं जिससे ऐसा लगता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, यहाँ पर जो आए जो कुछ करके चला जाए तो उसको कुछ होता नहीं है।
ये थे बीबीसी संवाददाता सुबैर अहमद।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
उर्दू के मशहूर शायर और फिल्म गीतकार निदा फासली का आज मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 78 साल के थे। शायरी की दुनिया में निदा जाना पहचाना नाम थे। उन्होंने शायरी और गजल के अलावा कई फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे। उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं विदित मेहरा।
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
ऐसे और भी कई गीत जो कि दिल को छू जाएं, उनके रचयिता उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली का आज मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 77 साल के थे। निदा फाजली का असली नाम मुक्तदा हसन था। निदा फाजली आसान भाषा में दोहे लिखा करते थे और उनके दोहों और गजलों को जगजीत सिंह की आवाज ने कई लोगों तक पहुंचाया भी। निदा फाजली की शायरी में शुरुआत से ही एक बागी तेवर था जो अंत तक बना रहा। उनकी उम्र तक आते आते कई शायर या तो अपने आप को दोहराने लगते थे या फिर चूक चुका जाते थे, पर निदा फाजली पर इन दोनों का ही कोई असर ना हुआ। 35 सालों से निदा फाजली के उर्दू शायर शीन काफ निजाम से काफी गहरे ताल्लुकात थे और उनकी माने तो निदा साहब जैसा अब कोई ना आएगा।
निदा फाजली के नहीं रहने का सिर्फ उर्दू को नहीं, ये जानता हूँ कि पूरी हिंदुस्तानी शायरी को नुकसान हुआ उससे, और खास तौर से जिस जमाने में और जिस तरह के हालात में हम हैं और गुजर रहे हैं उसमें निदा साहब जैसे आदमी का रहना बहुत जरूरी था। उनसे इख्तलाफ भी वो हमेशा मुस्कुरा कर झेलते थे, और खास तौर से जब उन्होंने असातिज़ा की जमीन में गजलें कही थी और उनकी माँ वाली वजन या है कि नज्म इस पर बहस छिड़ी थी।
अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी
पद्मश्री और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित निदा आम जनता के लोकप्रिय शायर थे। उनके 5 संग्रह प्रकाशित हुए। निदा फाजली ने सरफरोश, रजिया सुल्तान और सुर जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। निदा फाजली ने फोक को शायरी बना दिया। ऐसा मानना है शीन काफ निजाम का, जो निदा फाजली के सफर को कुछ इस तरह बयां करते हैं।
ग्वालियर से आए हुए निदा फाजली बम्बई में जिस तरह जिंदगी जी और शायरी की जिस तरह उन्होंने गजल को एक बिल्कुल यूं समझिए कि पटरी पर रखते हुए, क्योंकि उनका खानदान जो था वो तो नू नारवी यानी दाटी स्कूल का खानदान था। उनके वालिद जो नू नारवी के शागिर्द थे और नू नारवी दाट के शागिर्द थे, बल्कि जानशीन थे उनके, तो उनका सिलसिला दाट से मिलकर यही उनकी जबान थी। और उन्होंने हर बार अपनी सनद में कभी तुलसी और अवामी अदब यानी फोक लिटरेचर इनका इस्तेमाल किया।
निदा फाजली जितनी अच्छी शायरी करते थे उतनी ही अच्छी नस्र लिखते थे, यानी प्रोज। और निजाम साहब के मुताबिक जब इंसान प्रोज लिखता है तो वो दूसरों से मिलता है, जब शायरी लिखता है तो अपने आप से मिलता है। और ये दोनों ही खूबी निदा फाजली में थी। शायद इसीलिए उन्होंने कहा, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए।
निदा फासली को श्रद्धांजलि। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और देवबंद की विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है और सभी दलों ने प्रचार में अपना सारा दमखम लगा दिया है। मगर 2014 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी मतों के ध्रुवीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बीच मूल मुद्दे पूरी तरह गौण हो गए हैं। मुजफ्फरनगर से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
ये भीड़ का उन्माद नहीं है बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार का मूड है, जो किसी उन्माद से कम भी नहीं है। ये दो सीटें हैं मुजफ्फरनगर शहर और इससे लगे देवबंद की।
साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देवबंद विधानसभा,
कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा के चुनाव का मूड तय करेंगे। इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं और न ही बसपा ने किसी का समर्थन ही किया है। चुनाव लड़ रही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जोश किसी आम चुनाव से कम भी नहीं है। ये दोनों सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि वर्ष 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैला था और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर इलाके में उत्तेजक भाषण देने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा था। कुछ तो दंगों के आरोपी भी हैं। इस बार फिर यही नेता उपचुनाव के दंगल में दो दो हाथ कर रहे हैं। एजेंडा तय है, वो है मतदाताओं के ध्रुवीकरण का। यहाँ विकास मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने पूछा मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल से।
विकास की बात बाद में है, पहले बेटियों का लड़कियों का सम्मान सुरक्षित रहे। हमारा सम्मान ही सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार अति हो गई है। बहुत खौफनाक वातावरण इस जनपद में भी अब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है।
खत्म कैसे होगा
उसी मुद्दे को लेकर? हमारे चुनाव से खत्म होने वाला नहीं है, हम भी जानते, पर मुजफ्फरनगर में तो खत्म होगा, ये तो तय है। क्योंकि मुजफ्फरनगर में जब भी कोई बात आती है हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के पास पहुँचते हैं, उनकी बात सुनते हैं और अधिकारी भी इस बात से थर्राते हैं। मुजफ्फरनगर सीट अगर हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ ये अमेंडमेंट।
दंगों के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रचार में जोरदार तरीके से लगे हुए हैं और उन पर एक बार फिर उत्तेजक बयान देने के आरोप लगे हैं। उन पर लव जिहाद और गौ हत्या के मुद्दों को लेकर नफरत फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं दूसरे राजनीतिक दल भी इस हम्माम में कुछ अलग नहीं है। ध्रुवीकरण के प्रयासों की प्रतिस्पर्धा के बीच में विवादों में रहने वाले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी पीछे नहीं है।
तुम्हारे साथ तो जो खड़े हुए हैं, टोक करके जवाब देने वाले जो जवाब देना चाहते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और किसान गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मगर संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण के प्रयासों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में मूल मुद्दों को पीछे ढकेल दिया है।
किसी को भी ये जो बराबर वाला है ना मंत्री, चला गया बेचारा, मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन ये आपको जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं,
सलमान रावी, बीबीसी मुजफ्फरनगर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। एंगेला मर्केल तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ शरणार्थी संकट पर बात करने गई हैं। मर्केल इसलिए भी बातचीत के लिए गई हैं ताकि यूरोपीय संघ द्वारा तुर्की को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भरोसा दिला सके। यूरोपीय संघ के देशों द्वारा अपील किए जाने के बाद भी तुर्की ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शरणार्थियों के लिए बंद की हुई हैं, जिससे यूरोप में ये संकट और गहरा रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के ब्यौरे के साथ वैभव श्रीवास्तव।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल तुर्की की राजधानी अंकारा में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए बातचीत करने गई हैं। जर्मनी ने पिछले साल लगभग 10 लाख लोगों को शरण के लिए अपने देश में आने की मंजूरी दी थी। एंगेला मर्केल तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान और प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू से शरणार्थी समस्या का हल निकालने पर बात करेंगी। आंकड़ों के अनुसार इस वक्त तुर्की में 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा कहने के बावजूद फिलहाल तुर्की ने अपनी सीमाएं शरणार्थियों के लिए काफी समय से बंद की हुई हैं। सीरियाई शहर अलेपो में रूसी समर्थित सेना द्वारा किए गए हमले के बाद हजारों की तादाद में लोग अलेपो से भी पलायन कर रहे हैं। तुर्की की गैर सरकारी संस्था ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन के एक शिविर में काम कर रहे बुराक काराकाओग्लू वहां की स्थिति के बारे में बता रहे
हैं।
आसरा मिलना सबसे जरूरी है। मौसम बहुत ठंडा है, लगातार बारिश हो रही है, बर्फ भी पड़ सकती है। इतनी ठंड है कि सिर्फ पिछले कुछ वक्त में 20 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त सबसे जरूरी है रहने की जगह और जरूरी सामान का मुहैया कराया जाना।
तुर्की की गैर सरकारी संस्था ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन के शिविर में काम कर रहे बुराक काराकाओग्लू के शब्द। यूरोप में आने वाले ज्यादातर शरणार्थी तुर्की के रास्ते से आते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली 3.3 अरब डॉलर की रकम के बदले तुर्की को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आने वाले शरणार्थियों को नियंत्रित करना था। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के नेता अंकारा से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो अपनी सीमाएं शरणार्थियों के लिए खुली रखें। सीरियाई सीमा पर स्थित बाब अल सलाम से लगे हुए तुर्की के शहर ओंक्यूपिनर की सीमा पर 3 दिनों से लगातार शरणार्थी बिगड़े हुए मौसम को झेल रहे हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अलेपो हमलों के बाद तुर्की और सीरिया की सीमा पर रह रहे शरणार्थियों ने कहा,
हम तुर्की सरकार से विनती करते हैं कि वो हमें अपने देश में जगह दे, हम अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं से निजात चाहते हैं।
वहीं मोहम्मद अल्लावी शेवेवी का कहना है कि उनका परिवार सीरिया में फंसा हुआ है।
एंगेला मर्केल तुर्की में। आज सोमवार है और आप इंतजार कर रहे होंगे अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति जी, आज आपके पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं हमेशा की तरह, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे हमारे श्रोताओं की चिट्ठियां आ जाएं जिनकी चिट्ठियां अक्सर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वो हमसे बहुत नाराज रहते हैं कि बार बार आप कुछ ही श्रोताओं की चिट्ठियां इस्तेमाल
करते हैं। पहली चिट्ठी जोगाराम गढ़वीर की है। इससे पहले मेरे ख्याल से इन्होंने कभी पत्र लिखा नहीं हमें।
नाम है जोगाराम गढ़वीर
जी, जिला बाड़मेर राजस्थान से इन्होंने पत्र लिखा है और ये कहते हैं कि अछूत जिसे सभी लोग दलित कहकर पुकारते हैं, अपने हकों के लिए जागरूक हैं और वफादार भी, हमारे अछूतों के, ये इन्होंने लिखा है, के सभी प्रकार के मुद्दों को आप अपने मंच पर जगह देने का प्रयास करते हैं, बस एकमात्र बीबीसी। और साथ ही इन्होंने कहा है कि निष्पक्षता और स्पष्टता जो है बीबीसी को, उसको सलाम।
बहुत बहुत धन्यवाद जोगाराम गढ़वीर साहब। मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने पहले कब चिट्ठी लिखी है, लेकिन आपकी चिट्ठी से मुझे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि आप बहुत ही बारीक श्रोता हैं। और आपने आखिर में लिखा हुआ है, अन्य मेरे दोस्त जो बीबीसी नियमित सुनते हैं, अशोक परमार, जीरा राम, पीरा राम देवड़ा, गोपाल मेघवाल, कलाराम पूनड़, इन सभी का नाम आपने लिखा है और ये चौहदन जिला बाड़मेर से अपनी चिट्ठी लिखी है। आपका कहना सही है कि हम कोशिश ये करते हैं कि समाज के हर समुदाय की बात हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें और यही हमारी कोशिश रहती है।
अगला पत्र रफीक इब्राहिम पारकर का है, अक्सर पत्र हमें लिखते रहते हैं, रत्नागिरी महाराष्ट्र से। इन्होंने कहा है कि निखिल रंजन ने जो दुनिया जहान में अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के बारे में जानकारी दी वो इन्हें बहुत पसंद आई। कहते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब इन्होंने मतलब बताया कि इस देश का जो नाम है उसका मतलब ईमानदारों का देश है, क्योंकि वो कई दिनों से ये सोचते थे कि आखिर इस देश के नाम का क्या मतलब है। साथ ही इन्होंने एक अनुरोध किया है कि अगर आप श्रोताओं से छोटी सी मुलाकात हर हफ्ते प्रसारित करें तो अच्छा रहेगा।
देखिए, अब इसमें ये सुझाव तो आपका बहुत अच्छा है पारकर साहब, लेकिन इसमें खतरा ये है कि एक दिन मान लीजिए हमने पारकर साहब यानी आपसे बात कर ली तो हमारे दूसरे जो श्रोता हैं वो कहेंगे ये क्या बात है साहब, सिर्फ इन्हीं को क्यों चुना। तो हमारे तो जितने श्रोता हैं हमारा परिवार है वो, और परिवार में हम किसी एक को आगे बढ़ा के दूसरे को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई हमारा श्रोता दिल्ली स्टूडियो में आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए, उनकी राय सुनी जाए, समझी जाए। आपने ये जो अपनी चिट्ठी में बात कही है कि दुनिया जहान के बारे में, तो जाहिर सी बात है हमारी कोशिश ही रहती है कि दुनिया जहान में हफ्ते में एक बार आपको ऐसी जानकारी दी जाए अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में जो आपको दरअसल भारत के और मीडिया में कम मिलती है।
अगली जो चिट्ठी है वो फारूक अब्दुल्ला फिजा की है, लक्ष्मीपुर रक्सौल से। इन्होंने पूरी चिट्ठी में आदेश कुमार गुप्त की तारीफ की और ये लिखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्रिकेट मैच हाल ही में श्रृंखला जो थी उसके बारे में उन्होंने हर प्रोग्राम में जानकारी दी और उनका जो आदेश जी का रिपोर्ट करने का जो तरीका है उसकी इन्होंने तारीफ करते
बहुत
लिखा है।
सारे लोग उनकी जो स्टाइल है उसकी तारीफ करते हैं और आदेश जी को मैं बार बार कहता हूं लेकिन वो इतने संकोची हैं कि वो खामोश रहते हैं, कहते हैं साहब बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का। तो फिजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वाति मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ईमेल भी बहुत सारे हैं, अभी तो आपने चिट्ठियां ली थी जो बाय पोस्ट आई थी, ईमेल कुछ ले लें।
ईमेल्स में हमेशा की तरह जैसे हमें इंडिया बोल और विवेचना के बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलता है तो रिहान फजल की विवेचना की बात सुरेंद्र नाथ सिंह ने की है, नागांव असम से। लिखते हैं कि श्याम भाटिया पर जो उन्होंने विवेचना की वो बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा नमस्कार भारत में पतंजलि के विज्ञापन पर निखिल रंजन ने जो खबर की थी वो इन्हें अच्छी लगी और कहते हैं कि बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि रामदेव कितने कमर्शियल हो गए हैं और उनका विज्ञापन खर्च जो है वो कैडबरी के विज्ञापन से भी आगे है। उन्होंने बिहार के वात्सल्य सिंह की कामयाबी की कहानी भी जो हमने सुनाई वो इनको काफ़ी पसंद आई। सुरेंद्र नाथ सिंह इनका नाम है, असम से इन्होंने ईमेल लिखा।
जी हाँ, मैं इनको हमेशा हम लोग याद करते हैं क्योंकि इनकी चिट्ठियाँ प्रतिक्रिया हमारे पास अक्सर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। इसी मैं देख रहा हूँ कि एक और ईमेल आपके पास है जो इंडिया बोल या विवेचना के बारे में।
जी हाँ, इंडिया बोल के बारे में दो ईमेल्स हैं। नितेश पंत ने कांकेर छत्तीसगढ़ से लिखा है, कहते हैं कि रंगभेद पर जो आपने कार्यक्रम पेश किया वो अच्छा था इंडिया बोल, और श्याम भाटिया पर विवेचना की भी इन्होंने तारीफ की और कहते हैं कि यही बातें हैं जो बीबीसी को स्पेशल बनाती हैं और इस तरह के वर्णन कहीं और सुनने को नहीं मिलते। अजय कुमार कैथवली ने बलिया यूपी से लिखा है, इनका कहना कुछ और है। इनका कहना है कि कार्यक्रम में जिस तरह से जिस घटना को रंगभेद का नाम दिया गया वो तो एक सामान्य सा रोड एक्सीडेंट का मामला था, चूंकि घटना एक विदेशी महिला से संबंधित थी इसलिए मीडिया ने इसे ज्यादा तवज्जो दी।
नाम दोबारा बताइएगा।
इनका नाम है अजय कुमार कैथवली, बलिया उत्तर प्रदेश।
बलिया से अजय कुमार साहब, ये आपकी राय है जो आपने प्रस्तुत की। दरअसल इंडिया बोल में इस विषय पर बातचीत करने का मकसद ही यही था कि समाज में जितनी विचारधारात्मक उथल पुथल चल रही है उसको हम अपने कार्यक्रम के मंच में प्रस्तुत कर सकें। तो आपकी राय आपकी जगह है, दूसरे श्रोताओं ने राय जाहिर की वो उनकी जगह है, लेकिन तमाम श्रोताओं को एक कार्यक्रम इंडिया बोल पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई चिट्ठी आप नहीं ले पाएंगी क्योंकि बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं श्रोताओं से अब विदा चाहता हूँ।
नमस्कार।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। 2008 के मुंबई हमलों के मामले में अमेरिका की जेल में बंद डेविड हेडली ने माना कि वो हमलों से पहले जानकारी हासिल करने के लिए 7 बार मुंबई आया था। डेविड हेडली ने आज मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल की तीसरी तिमाही में 7.3% की दर से बढ़ी। यूरोप के शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखी गई। जर्मनी का प्रमुख शेयर बाजार अक्टूबर 2014 से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। पेरिस में 3% और लंदन में शेयर बाजार 2% गिरा। ग्रीस में बैंकों के शेयर 20% गिरे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।